ॐ नमो भगवते का चौथा अध्याय हम शुरू करने वाले। श्रील प्रभुपाद ने अपनी असीम कृपा के कारण हमें हर अध्याय से पहले थोड़ा सा वो अध्याय का समरी या उसका सारांश प्रदान किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब हम नया अध्याय शुरू करते हैं तो उसकी जो समरी या सारांश है उसको भी हम डिस्कस करें। तो अध्याय चार का नाम है ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बताया है कि इस अध्याय में पूरी तरह से बताया गया है कि हिरण्यकशिपु ने किस तरह ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त की और फिर किस तरह ब्रह्मांड के समस्त जीवों को तंग करने के लिए उसका शक्ति का दुरुपयोग किया। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मनवांछित बल वर प्राप्त किए। इन वरों को प्राप्त होते ही उसका शरीर, जो प्राय पूरी तरह से विनष्ट हो चुका था, पूर्ण सौंदर्य तथा स्वर्ण जैसी कांति से चैतन्य हो उठा। इतने पर भी वह भगवान विष्णु से ईर्ष्या करता रहा और अपने भाई के वध को भुला नहीं पाया। उसने दसों दिशाओं तथा तीनों लोक जीत लिए और देवताओं तथा असुरों को अपने वश में कर लिया। वह इंद्र को उसके निवास से भगाकर सारे स्थानों का स्वामी बन बैठा। अत्यंत विलासमय जीवन बिताने लगा, अतः वह प्रमत्त हो उठा। भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव जी के अतिरिक्त सारे देवता उसके अधीन होकर उसकी सेवा करने लगे, किंतु इतनी भौतिक शक्ति के बावजूद भी वह असंतुष्ट था, क्योंकि वह वैदिक नियमों का उल्लंघन करने से गर्वित और फूला हुआ था। सारे ब्राह्मण उससे असंतुष्ट थे और वे संकल्प करके उसे श्राप देते थे। अंततो गत्वा ब्रह्मांड के सारे जीवों ने, जिनमें देवता तथा ऋषि भी थे, हिरण्यकशिपु के शासन से मुक्ति पाने के लिए स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि उन्हें तथा अन्य जीवों को हिरण्यकशिपु द्वारा उत्पन्न भयाक्रांत परिस्थितियों से बचाया जाएगा, किंतु हिरण्यकशिपु सारे देवताओं, वेदों के अनुयायियों, गायों, ब्राह्मणों तथा धार्मिक साधु पुरुषों का उत्पीड़क था, और चूंकि वह परमेश्वर से द्वेष रखता था, अतएव शीघ्र ही उसका वध किया जाएगा। हिरण्यकशिपु का अंतिम कारनामा होगा अपने ही पुत्र प्रहलाद को सताना, और जो एक महाभागवत परम वैष्णव थे, तब जीवन का अंत होगा। जब भगवान ने देवताओं को इस तरह आश्वस्त कर दिया तो हर एक प्राणी यह जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ कि शीघ्र ही हिरण्यकशिपु के कारण ढाए जाने वाले दुखों का अंत हो जाएगा। अंत में नारद मुनि हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन करते हैं और बतलाते हैं कि किस प्रकार एक पिता अपने ही योग्य पुत्र से ईर्ष्या कर सकता है। इस प्रकार अध्याय का अंत होता है। श्रील प्रभुपाद की दी हुई समरी इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की हम क्या कहते हैं क्लास से पहले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हिरण्यकश्यप क्या चाहता था कि ब्राह्मण लोग क्या मंत्र जपें, ओम नमो भगवते हिरण्यकश्यपाय, कोई नहीं गा रहा। हिरण्यकश्यप का मंत्र है, उसने अपने घर में बनाया गिट से के ये मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ठीक मंत्र नहीं है, क्योंकि इस संसार का भगवान तो मैं हूं। मंत्र होना चाहिए ओम नमो भगवते हिरण्यकश्यपु आया, ये हिरण्यकश्यप का मंत्र। तो पहले श्लोक में श्री नारद मुनि बताते हैं, एवं रतशतग्रति हिरण्यकशिपुपोरथ प्रदातपता प्रीतो वरान्तस्य सुदुर्लभान। नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु की दुष्कर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे, अतएव जब उसने वर मांगे तो उन्होंने दुर्लभ वर भी प्रदान कर दिए। श्री ब्रह्मोवाच ताते मे दुर्लभा पुंसां वणीषे वरान् मम तथापि वीरताम ताम व्यंगं वरान् यद्यपि दुर्लभान् ताते मे दुर्लभा पुंसां यान् वणीषे वरान् मम वरान् यद्यपि दुर्लभान्। श्री ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, तात हे पुत्र इमे ये सभी दुर्लभ बहुत ही कम प्राप्त होने वाले पुंसां मनुष्यों को यान जो व्रणीशे तुम मांगते हो अंग, हिरण्यकश्यप, वरान, वरों को, माम, मुझसे, तथापि, फिर भी, वितराम, वितरामी, मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, वरान, वरों को, यद्यपि, यद्यपि, दुर्लभान, सामान्यता प्राप्त ना होने वाले। अनुवाद, ब्रह्मा जी ने कहा एक बार, ब्रह्मा जी ने कहा हे हिरण्यकशिपु, तुमने जो वर मांगे हैं वे अधिकांश मनुष्यों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते। हे पुत्र, यद्यपि ये वर सामान्यतया उपलब्ध नहीं हो पाते, लेकिन मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तात्पर्य, बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की। भौतिक वर सही रूप में वर कहलाने योग्य नहीं होते। यदि किसी को अधिकाधिक वर मिले तो ऐसा वर स्वयं में शाप बन सकता है, क्योंकि इस जगत में जिस तरह भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शक्ति तथा प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह उसे बनाए रखने के लिए प्रयास द्वारा मांगे वर दे तो रहे हैं, लेकिन उन्हें निभा पाना अत्यंत कठिन होगा। फिर भी चूंकि ब्रह्मा ने वचन दिया था, अतः वे उसके मांगे गए सारे वर दे देना चाहते थे। दुर्लभान शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा वर ना ले जिसे शांति पूर्वक भोगा न जा सके। तो यहां पे ब्रह्मा जी के वाक्य, ब्रह्मा जी ने भी काफी श्लोक भागवतम में बोले हैं, जिस तरह से श्रीमद् भागवतम में 14,000 श्लोक हैं, बताया था पहले यहां श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोक हैं, 14,075, 14,075, लेकिन 18,000 भी सही आंसर है। कैसे है? क्योंकि संस्कृत के नियमों के अनुसार 32 शब्दों से एक श्लोक बनता है, और श्रीमद् भागवतम में खास करके प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद में बहुत सारे श्लोक 32 से कहीं ज्यादा शब्दों के, तो इसलिए अगर हम वो सब शब्द ले लें और उसको 32 से डिवाइड कर लें तो क्या आएगा, 18। लेकिन उस तरीके से श्लोकों की गणना करना मुश्किल है कि किसने कितने श्लोक बोले, क्योंकि हमारे पास एक एक श्लोक एक एक व्यक्ति का बोला हुआ है। कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे कि श्लोक के बीच में वक्ता चेंज हो गया, देखा है कभी? श्लोक के बीच में वक्ता चेंज नहीं होता। अगर जो दूसरा वक्ता है तो वो नेक्स्ट श्लोक से बोलेगा। तो गणना करने के लिए हमारे पास 14,075 श्लोक, 14,075 श्लोक में से कौन बता सकता है कि सबसे ज्यादा श्लोक किसने बोले श्रीमद् भागवतम, सबसे अधिक श्लोक किसने बोले नारद मुनि? और कोई उपकार? हाथ ऊपर करो। सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, सुख गोस्वामी। आपने चेंज कर लिया आंसर, आपको विश्वास नहीं था अपने आंसर पे। आपका आंसर राइट है, सुखदेव गोस्वामी। श्रीमद भागवतम में 12 स्कंदों में 336 अध्याय हैं, 336 अध्याय 12 स्कंदों में। अगर जो एवरेज निकाली जाए तो 336 को 12 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? करीब 30 श्लोक, 28 अध्याय पर कैंटो, 28 अध्याय हर स्कंद में। लेकिन बहुत सारे स्कंद आप देखोगे 20, 22, 24, 26 अध्याय, तो 28 की एवरेज कहाँ से आ गई? सारी एवरेज खराब करी किसने? 10वें स्कंद में। 10वें स्कंद में अकेले ही 90 अध्याय, अकेला 10वां स्कंद 90 अध्याय। सारी भागवतम ज्यादातर सुखदेव गोस्वामी ने नहीं बोली 10वें स्कंद के अलावा, लेकिन सब तब भी सबसे बड़े स्पीकर वही हैं, क्योंकि 10वां स्कंद लगभग सारा उन्होंने बोला, पूरे 90 अध्याय, जो कम से कम 3 अध्याय, 3 स्कंदों के बराबर एक अकेला है संस्कृत के हिसाब से। उन्होंने वो लगभग सारा अपने आप बोला है। कितने वर्ड्स? करीब 4800, 14000 में से करीब 4800 स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने। स्पीकर नंबर 2, वक्ता नंबर 2, सूत गोस्वामी, सूत गोस्वामी, सूत गोस्वामी, नारद मुनि, कोई और? ये ऑलमोस्ट गारंटी मैं कर सकता हूं, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं। अगर भक्ति विनोद नहीं बना सकते तो कौन बता सकता? कोई नहीं बता सकता। दिस इज द हार्डेस्ट गेस, यू विल नेवर इमेजिन, यू विल नेवर इमेजिन, यू कैन नेवर गेस, कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता इसका। स्वयं भगवान कृष्ण 1117 श्लोक, क्यों कोई अनुमान नहीं लगा सकता? क्योंकि 11वां स्कंद बहुत से लोग नहीं पढ़ते। कितने लोगों ने 11वां स्कंद पढ़ा यहां? ऑलमोस्ट सारी क्लास ने 11वां स्कंद नहीं पढ़ा। 11वां स्कंद लगभग सारा स्वयं भगवान कृष्ण का बोला हुआ है। मैं विष्णु को काउंट नहीं कर रहा, विष्णु की काउंटिंग अलग है। 140 श्लोक विष्णु जी ने बोले हैं और 140 श्लोक शिव जी ने अलग से बोले हैं। नारद मुनि ने भी करीब 800 श्लोक बोले हैं। नंबर 3 इज इजी टू गेस, कौन नंबर 3 गेस कर सकता है? नंबर 3 इज वेरी इजी, ऑलमोस्ट 1000 श्लोक। पत्ता नंबर 3, आई एम सरप्राइज, दिस वन इज द इजिएस्ट, मैत्रेय। पूरा बीच का भागवतम ऑलमोस्ट सारा मैत्रेय ने बोला है विदुर जी के साथ में। मैत्रेय इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्पीकर, उसके बाद नारद मुनि और उसके बाद सूत गोस्वामी। 741 श्लोक सूत गोस्वामी, नारद मुनि करीब 900, बहुत सारे छोटे छोटे वक्ता और भी हैं, और बॉटम ऑफ द लाइन आप कभी इमेजिन नहीं करोगे। ये भागवतम किसने लिखी है? शिल व्यासदेव। शिल व्यासदेव में ने इसमें कितने श्लोक बोले हैं? शिल व्यासदेव उवाच, कितने श्लोक? केवल छह, कुल मिला के छह श्लोक उन्होंने स्वयं अपनी वाणी में बोले, 14,075 श्लोक में से या 18,000 श्लोकों में से केवल छह श्लोक, जो कि सारे भागवतम के रचयिता हैं। तो यहां पे ये श्लोक जो है ये स्वयं ब्रह्मा जी ने बोला है। ब्रह्मा जी एक तरह से मिडल ऑफ द लाइन स्पीकर हैं, करीब 101 श्लोक, बहुत सारे टोटल वक्ताओं की संख्या नहीं बताई, करीब 400 वक्ता हैं श्रीमद् भागवतम के, जिसमें से सुखदेव गोस्वामी इज ऑन द टॉप, कृष्ण इज नंबर 2, देन देयर इज मैत्रेया, देन नारद मुनि, सुत गोस्वामी। ये मुश्किल है गैस करना कि नारद मुनि ने सूत गोस्वामी से भी ज्यादा श्लोक बोले होंगे। नारद मुनि इज नॉट सपोज टू बी द वक्ता ऑफ द श्रीमद् भागवतम, सूत गोस्वामी इज सपोज टू बी, बट एक्चुअली नारद मुनि ने सूत गोस्वामी से भी ज्यादा श्लोक बोले, के करीब 900 श्लोक है, 900 से कुछ कम, और सूत गोस्वामी करीब 750। सूत गोस्वामी ने पहले स्कंद में भागवतम को शुरू किया, फिर दूसरे लोगों को कोट किया, और 12वें स्कंद में उसको फिनिश ऑफ किया अपने स्वयं के द्वारा बोला। तो 12वें स्कंद में कुछ श्लोक उनके अंत के चैप्टर्स में वो केवल सूत गोस्वामी ने बताए, और शुरू का स्कंद लगभग सारा सूत गोस्वामी ने बताया है। इट्स लाइक ए लेक्चर ऑन श्रीमद् भागवत, उन्होंने एक तरह से पूरे स्कंद में श्रीमद् भागवतम का इंट्रोडक्शन की तरह दिया है। तो उस तरीके से श्रीमद् भागवतम एक्चुअली दूसरे स्कंद से तो शुरू होती है, जिसको हम श्रीमद् भागवतम मानते हैं। किसको श्रीमद् भागवतम मानते हैं? श्रीमद् भागवतम हम सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को बताया उसको मानते हैं। तो वो तो दूसरे स्कंद से शुरू होता है, वो भी 8वें चैप्टर में जाके आपको पता लगेगा कि हाँ परीक्षित महाराज कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नों से तो सब कुछ शुरू होता है। तो डेढ़ स्कंद लगभग निकल गया, अभी प्रश्न पूछने शुरू किए हैं परीक्षित महाराज। तो श्रीमद् भागवतम एक बहुत अद्भुत रचना है, बहुत अद्भुत, और इसको समझ पाना बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन, लेकिन कोई अगर अच्छे से समझा दे तो कुछ भी नहीं है, मीनिंग इतना कठिन नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि सबसे ऊपर एक कन्वर्सेशन चल रही है, किसकी? शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी, वो टॉप कन्वर्सेशन हाईएस्ट लेवल। उसके बाद परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, उसमें वो आ जाते हैं महर्षि मैत्रेया एंड विदुर जी, उसमें वो और किसी को कोट करते हैं, क्योंकि ये सब डायरेक्ट स्पीकर्स हैं एक तरह से। फिर नारद मुनि को काफी कोट किया जाता है, तो जब वो कोट करते नारद मुनि तो कहते नारद मुनि उवाच, तो वो नारद मुनि के बताए हुए वो उसके नीचे आते। फिर नारद मुनि किसी और की कथा बताते और उस कथा में कोई और कथा निकल आती तो दैट मेक्स द सब्जेक्ट मैटर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो वी हैव हैड डिवोटीज गो थ्रू ईच वर्स कि इसका वक्ता कौन है और इसका श्रोता कौन है। हर वर्स पूरे 14,075 वर्स गिन के उसका श्रोत, उसका वक्ता उसका श्रोता सबकी सारणी है हमारे पास। तो ये जो नंबर्स हम आपको बता रहे हैं ये कहीं हवा में से नहीं आ रहे हैं, ये वास्तव में मैनुअली गिने हुए हैं, कोई कंप्यूटर कैलकुलेशन भी नहीं है। हमारे भक्तों ने ये मैनुअली गिने, उनकी सारणी बनाई है किस अध्याय में, अब किस स्कंद में, किस अध्याय में कितने लोगों ने कितने वर्ड्स बोले और उनको कितनों ने सुना। बिकॉज व्हेन देयर इज अ स्पीकर देयर इज ऑल्सो अ ऑडियंस और लिसनर। जैसे सूत गोस्वामी के लिए शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषिगण, और सुखदेव गोस्वामी के लिए स्वयं परीक्षित महाराज और उनके साथ में बैठे हुए कितने सारे ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषिगण और सुनने के लिए आए थे। उसमें सुनने वालों में बोलने वाले तो सुखदेव गोस्वामी, सुनने वालों में स्वयं वेदव्यास उनके पिता जिनसे उन्होंने श्रीमद् भागवतम सीखी, और स्वयं वेदव्यास के पिताजी महर्षि पराशर वो भी वहीं सब बैठे सुन रहे और सुखदेव गोस्वामी बता रहे। क्यों? बिकॉज सुखदेव गोस्वामी वॉज द मोस्ट कॉन्फिडेंट। आई नो आई कैन टेल 7 days नो प्रॉब्लम, प्लेंटी ऑफ टाइम। बाकी सब तो घबरा गए, 7 दिन में सारा भगवत ज्ञान ऐसा कैसे हो सकता कि लोग हजारों वर्ष बिता देते थे भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आप 7 दिन में मांग रहे हो, कैसे होगा? सुखदेव गोस्वामी कोई समस्या नहीं है, 7 दिन बहुत है, लेकिन एक शर्त, 7 दिन में कोई सोएगा नहीं। टी ब्रेक तो बहुत दूर की चीज है, नो नाइट ब्रेक, नो लंच ब्रेक, नो डिनर ब्रेक, नो ब्रेकफास्ट, नो वाटर, नॉट अ सिप ऑफ वाटर। 7 दिन चाहिए ना, 7 दिन में मैं कर दूंगा, लेकिन ये कंडीशन है। और आजकल हम जब करते हैं भागवत कथा, ऑफ कोर्स हम सुखदेव गोस्वामी नहीं है, लेकिन 45 मिनट के बाद बड़े बड़े मुंह खुलने शुरू हो जाते हैं, तो मुंह दबा के लोग दवाई लेने लगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम कलयुग के जीव हैं, जितना भी हमसे हो जाए अच्छा है, और हमें डिस्काउंट मिले हुए। भगवतम क्लास में सोने का डिस्काउंट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 घंटा इसे, इसलिए श्री प्रभुपाद ने भागवतम क्लास को 1 घंटे का लिमिट किया है, 1 आवर भागवतम क्लास। हियर इज द एक्सपीरियंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, व्हेन द एक्सपीरियंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस स्पीक्स देन देयर इज नो वर्ड टू रिप्लाई, क्योंकि सुनने का भी आनंद है और सोने का भी आनंद। और किस तरह से बैठे बैठे सो लेना है वो भी एक कला है। मुझे पता नहीं भगवान की 64 कलाओं में से एक है वो कि नहीं, लेकिन कहीं तमस में शायद आती होगी ऐसी कला। भगवान की तो सब कलाएं हैं शुद्ध सत्व में, लेकिन हो सकता है तमस में कहीं आती हो। बैठे बैठे ही योग निद्रा ले लो और सबको लगे हाँ सबको सुन लिया, और उसके बाद क्लास में क्या बताया गया सब कुछ याद भी है, सब कुछ पता है। क्यों? हम तो योग निद्रा में थे, कोई निद्रा थोड़ी थी वो। एनीवेज तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भौतिक मटेरियल बेनेडिक्शन या भौतिक वर प्राप्त करना वो सही रूप में बेनेडिक्शन या वर कहलाने के योग्य नहीं। हम क्या मांगते हैं भगवान से? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय चिट्टे नोट हरे। वो क्या है? सब भौतिक चीजें, सुख आएगा, अरे कितना आएगा, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, मात्र स्पर्शस्तु कौन तो या शीतोष्ण सुख दुख था, वो तो आता जाता ही रहेगा। हम समझते हैं सुख आए और रह जाए, जाए नहीं। लेकिन जैसे कि बताया गया है, सुन रहे मनवा, सुख की चिंता क्यों सताती है? दुख तो अपना साथी है, रहेगा तो वही, क्योंकि वो अपना साथी, सुख कभी आएगा कभी नहीं, वो तभी चला जाएगा, लेकिन रहेगा कौन साथ में? दुख, वो साथी अपना रूम में, किसी ना किसी रूप में हमारे साथ में रहेगा ही। तो इसलिए श्री प्रभुपाद पहले ही सेंटेंस में तात्पर्य के ये बता रहे हैं कि कोई भी मटेरियल बेनेडिक्शन या वर या आशीर्वाद या जिसको हम समझते हैं कि हमें कुछ मिल गया, वो मिलने के योग्य नहीं है। उसको नहीं कहा जा सकता कि आपको रियली कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि वो भौतिक है और वो इस शरीर के साथ जला दिया जाएगा, और नहीं भी जलाया तो भी दूसरे शरीर में तो नहीं जाएगा। इसलिए जो वर या आशीर्वाद या बेनेडिक्शन हमें प्राप्त करने चाहिए, वो आध्यात्मिक बेनेडिक्शन प्राप्त करने चाहिए, क्योंकि जो आध्यात्मिक शक्ति या आध्यात्मिक आशीर्वाद या आध्यात्मिक वर या आध्यात्मिक वस्तु, वो हमारी आत्मा के साथ में जाएगी और भौतिक वस्तु यही रह जाएगी। यदि किसी को अधिकाधिक वर मिले तो ऐसा वर स्वयं कोई श्राप बना सकता है, ऐसा श्लोक प्रपद कह रहे हैं कि अधिकाधिक भौतिक वर मिल जाए तो वो वर ही श्राप बन जाएंगे। क्या हुआ इसका? हिरण्यकशिपु का इतने सारे वर मिले तो अहंकार हो गया। अरे वो कह रहा है कि बंद करो ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जब करो ओम नमो भगवते हिरण्यकशिपुवाय, क्योंकि मैं ही भगवान हूं, मैंने इतने वर प्राप्त कर लिए भगवान से, तीनों लोकों का विजेता मैं हूं, तो मैं ही भगवान। भस्मासुर को या भागवतम में उसका नाम बताया गया है वृत्रासुर को वरदान मिला तो क्या हुआ? उस बेचारे की अपनी मृत्यु का कारण वही वरदान अगले दिन बन गया। क्या वर चाहिए था उसको? कि मैं किसी को भी इस दुनिया में किसी को भी हरा सकूं, किसी को भी मार सकूं। शिव जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये वर कैसे दे सकता हूं मैं? क्या, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा दे दो जिसके सर पे हाथ रख दूं वो मर जाए। चल ठीक है, कि तेरे साथ ये जो सुंदर सुकन्या है तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, अब तो मैं किसी को भी हैंडल कर सकता हूं, तो चल तेरे सर पे हाथ रख के ये कार्य पूरा कर लिया जाए। अब शिव जी आगे आगे और वृत्रासुर पूछे पीछे, शिव जी परेशान, ये तो मेरा वर मेरे ऊपर ही टेस्ट करना चाहता, तो भगवान आए छोटे से बालक के रूप में और रोक लिया वृत्रासुर। कह रहे तुझे पता है ये जो तुझे वरदान दिया है ना, ये असली शिव ने नहीं दिया, ये जो आगे आगे भागा जा रहा है ये तो नकली शिव है। क्या अच्छा नकली है? हाँ बिल्कुल नकली है, इसका वरदान भी नकली है। नहीं असली है वो, वरदान भी असली है। अच्छा तुझे इतना विश्वास है तो टेस्ट करके देख ले अपने सर पे हाथ रख के। नहीं नहीं बिल्कुल असली है, देखो बूम। टेस्ट हो गया। तो स्टैटिस्टिक्स है, हिंदी में कैसे कहते हैं? सांख्यिकी मीनिंग रियल फैक्ट्स के अमेरिका के, यहां के मुझे पता नहीं, रियल फैक्ट्स अमेरिका के जितने लोग वहां लॉटरी जीतते हैं, लॉटरी जीतना मतलब बहुत सारा धन एकदम से आपके पास आ गया, उसमें से वो लॉटरी जीतने वालों में से 95% दो साल में बैंकरप्ट हो जाते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? दिवालिया हो जाते हैं। दो साल में, दो साल। जो बड़े बड़े लॉटरीज के विनर हैं वैसे दिवालिया नहीं होने वाले थे, लेकिन लॉटरी जीतने की वजह से वो दिवालिया हो जाते हैं। एकदम से इतना भौतिक जिसको कह सकते हैं शक्ति प्राप्त हो जाना, वो कुछ अच्छा नहीं करके जाता। इससे तो अच्छा पहले था जब लॉटरी नहीं जीती थी, कम से कम अच्छी तरह से खास हो रहा था। और लॉटरी जीतने के बाद जिसको हम समझते हैं कि क्या समझते हैं, इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे। जब वो नोट एकदम से बहुत सारे आए तो वो असली संकट को दूर कर देते हैं। जो भौतिक संकट हम दूर करने चाहते थे वो तो और बढ़ गए, लेकिन असली संकट और ज्यादा हो गया कि अब सर्वाइवल की कठिनाई हो गई। जो व्यक्ति अच्छा खासा पहले ठीक ठाक रह रहा था, रोटी कपड़ा और मकान की कोई चिंता नहीं थी, अब वो भी संकट में आ गया क्योंकि दिवालिया हो गया। क्यों हुआ? वो भौतिक वर के कारण, बहुत अधिक भौतिक शक्ति मिलने के कारण। बिल्कुल जैसे कहते हैं भगवान ने दिया तो इतना दिया कि छप्पर भी फाड़ के दिया, जितना था वो भी निपट गया, ऊपर से इतना आया वो भी निपट गया। आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, उसी तरह इस जगत में जिस तरह भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शक्ति या प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह उसे बनाए रखने के लिए भी प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को बताया कि वे उसके द्वारा मांगे वर दे तो रहे हैं, लेकिन उन्हें निभा पाना अत्यंत कठिन होगा। फिर भी चूंकि ब्रह्मा जी ने वचन दिया था, अतएव वे उसके मांगे गए सारे वर दे देना चाहते। दुर्लभान शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा वर ना ले जिसको शांति पूर्वक भोगा ना जा सके। ठीक है, किसी को प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसी का? ये हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे हैं, ऐसा वर चाहते थे कि मैं कभी ना मरूं, और तपस्या करते करते एंट हिल बन गए उसके ऊपर। कैसे कहते हैं हिंदी में एंट हिल? दीमक, सारे शरीर को दीमक खा गई, ये रह गया हड्डियों का कंकाल। ब्रह्मा जी ने सारे वर दे दिए और ये प्रहलाद की माता कयाधु नारद मुनि जी से भागवत संदेश प्राप्त कर रही है और इनके गर्भ में स्थित प्रहलाद महाराज सब भागवत संदेश को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कई हजार वर्षों तक, क्योंकि कयाधु ने नारद मुनि जी से ये वर मांगा था कि जब तक मेरे पति अपने तपस्या से वापस नहीं आ जाएं, मैं अपने पुत्र को जन्म नहीं देना चाहती। मैं इसको तभी जन्म देना चाहती हूं जब वो आ जाएंगे तपस्या से। मैं इसको अपने गर्भ में तब तक सुरक्षित रख लूंगी। और रोज सुबह को भागवतम क्लास सुनने के लिए कयाधु जाए और सुने कौन? साथ में प्रहलाद महाराज। सारे वर मांगने की वजह से हिरण्यकश्यप आतताई हो गए, अपने पुत्र प्रहलाद को भी जब प्रहलाद ने कहा कि नहीं आप भगवान नहीं हो, भगवान तो स्वयं विष्णु है, आप भी उनकी शक्ति के अंतर्गत आते हो, मैं भी, तो हिरण्यकश्यप को ये अच्छा नहीं लगा। कई तरीके से मरवाने की कोशिश की कि मारो इसको अस्त्र शस्त्रों से, फिर इसको तेल के भगोने में जलाओ, इसको पॉइजन पिलाओ, इसको सांपों वाली कोठरी में बंद कर दो, इसको बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा दो और फिर जब कुछ भी नहीं हो पाया, होलिका भी नहीं जला पाई, तो बहुत क्रोध में हिरण्यकश्यप ने पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान जिसकी बात करता है, कि वो तो सब जगह है, सब जगह है, इस पिलर में भी है, हाँ इस पिलर में भी है, ले मैं अभी तेरे भगवान को मार देता हूं ये पिलर तोड़ के। तो उसमें से नरसिंहदेव प्रकट हुए और नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को उसके सारे प्राप्त किए हुए भौतिक वरों के समेत उसको कहां पहुंचा दिया? मुक्त कर दिया। वो यूजलेस शरीर से कौन सी मुक्ति दे दी? सायुज्य मुक्ति। जो कोई भगवान के हाथ से मरता है तो उसको सायुज्य मुक्ति। और उसके बाद प्रहलाद महाराज ने भगवान श्री नरसिंहदेव की पूजा की, स्तुति की और नरसिंहदेव भगवान ने प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिया और प्रहलाद महाराज ने सारे ब्रह्मांड के ऊपर राज्य किया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर।